अध्याय 18 हड़प्पा के बाद अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। हड़प्पा संस्कृति में कांसा धातु का व्यवहार पहले पहल काफ़ी होने लगा था, अतः इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। पर यह ध्यान देने की बात है कि इस समय तांबा और कांसा के व्यवहार के साथ साथ पाषाण उपकरण भी व्यवहार में थे, अतः इस आधार पर इस सभ्यता को अब ताम्रपाषाण सभ्यता की संज्ञा दी गई है। हाल की खुदाइयों से यह स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न भागों में ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ कालक्रम में आवर्तनोन्मुख हड़प्पा संस्कृति के समकालीन और पश्चात प्रचलित थी। पश्चिम भारत स्थित लोथल संस्कृति के द्वितीय चरण में मृदभांड के कुछ नए रूपों से परिचय होता है, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति की यह उपद्रावस्था का बोधक है। इस समय नगर योजना में ह्रास के चिन्ह स्पष्ट हैं। सड़कों की संरेखण उचित नहीं है और न नालियाँ ठीक से बैठाई गई हैं। अब चकमक पत्थर की जगह अकीक या सुलेमानी, सूर्यकांत, जैस्पर और चैल्सिडनी पत्थरों के उपकरण बनाए जाने लगे। शायद इस समय तक चकमक पत्थरों के स्रोत स्थानों से संबंध टूट चुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ताम्रपाषाणिक संस्कृति लोथल में पूर्ण रूप से जमने के पहले बाढ़ से बर्बाद हो गई थी, पर रंगपुर में यह उपपूर्ण विकसित हुई। यहाँ द्वितीय सांस्कृतिक काल का परिपक्व उत्तर हड़प्पा संस्कृति प्रचलित थी। इस स्तर पर मृदभांड और अन्य पुरावशेषों में कुछ न्यूनता भी पाई गई है। नए सांस्कृतिक काल में मृदभांड के नए रूप सामने आते हैं। इस समय के मिट्टी के कटोरों की दीवारें पतली हैं, उनका छोटा पर ठोस आधार है और उनकी जमीन महीन द्योतिमान लाल रंग की है। इस तथ्य को दोहराने में हर्ज नहीं कि आद्य ऐतिहासिक युग की संस्कृतियों की पहचान या नामकरण उनकी मौलिक मृदभांड विशेषता से ही की जाती है। हाल की पुरातात्विक खुदाइयों से मृदभांड के आधार पर संस्कृतियों का अनुक्रम स्थिर किया गया है। इसी आधार पर हड़प्पा संस्कृति के अंत के कुछ बाद कब्रगाह सेमेट्री एच की भिन्न संस्कृति मिली और सिंध में झूकर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इसलिए इसे झूकर संस्कृति कहा गया है। रंगपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद द्युतिमान लाल मृदभांड संस्कृति से हमारा परिचय हो गया है। गाढ़े लाल रंग पर गहरे काले रंग में चित्रकारी की गई है। रंगपुर में इसी सांस्कृतिक स्तर पर एक अन्य मृदभांड प्रकार का पता चला है, काला और लाल मृदभांड। चाक पर गढ़ने के बाद बर्तन को उल्टा कर आवा में पकाया जाता था, जिससे कि बर्तन का भीतरी या बाहर का ऊपरला हिस्सा काला और बाहर या बाहर का निचला हिस्सा लाल रह जाता था। इस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के साथ जो सहचारी संस्कृति बनी, उसे काला और लाल मृदभांड संस्कृति कहा जा सकता है। इस प्रकार के बर्तन लोथल तथा रंगपुर में उत्तर हड़प्पा संस्कृति के स्तर में ही मिलने लगे थे, पर रंगपुर के तृतीय काल में द्युतिमान लाल मृदभांड का काला और लाल मृदभांड से महत्वपूर्ण सहचर्य रहा। इस काल की तिथि 1000 से 800 ईसा पूर्व मानी गई है। काले और लाल मृदभांड संस्कृति का विस्तार अधिक था। राजस्थान में आहाड़, उदयपुर के निकट और गिलुंड की खुदाई से सबसे प्राचीन संस्कृति काला और लाल मृदभांड संस्कृति ही है। इस संस्कृति की उत्पत्ति शायद दक्षिण पूर्व राजस्थान में हुई हो, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोथल जो गुजरात में है, 2500 ईसा पूर्व के इसी प्रकार से पकाए गए बर्तन हड़प्पा मृदभांड के साथ मिले हैं। आहाड़ में काला और लाल मृदभांड संस्कृति के तीन चरण या प्रस्थान निर्दर्शित हैं। पहले चरण में रूपा काला और लाल चित्रित काला और लाल दगीना धूसर मोतिया लेप और लाल लेप वाले मृदभांड मिलते हैं। कुछ काला और लाल बर्तनों पर उजले रंग में सीधी या टेढ़ी लकीरें चित्रित द्वितीय चरण में मोतिया लेप वाले बर्तनों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। तृतीय चरण में लाल पर काला चित्रित और द्युतिमान लाल मृदभांड मिलने लगते हैं। आहाड़ की प्रथम कालीन संस्कृति का आरंभ 1800 ईसा पूर्व के पहले माना जा सकता है। इसका अंत 1100 ईसा पूर्व के पहले हो गया था। आहाड़ संस्कृति, जिसे वनास संस्कृति, आहाड़ का वनास नदी के तीर पर स्थित होने के कारण भी कहा जाता है, में हाथ से गढ़े मिट्टी के बर्तनों के अलावे चाक पर गढ़े बर्तन भी मिलते हैं। कुछ बर्तनों का एक हिस्सा हाथ से बनाया हुआ है और कुछ हिस्सा गला और ऊपर का जो भाग है चाक पर गढ़ा हुआ है और दोनों को जोड़ दिया गया है। बर्तनों में गोल, छोटा प्याला और अवतलित प्याला, स्तंभत, स्तरी, डिश ऑन स्टैंड प्रमुख हैं। कुछ बर्तनों पर उजले रंग में चित्रकारी की गई है और इस काल के अंतिम चरण में लाल पर काले रंग से चित्र हैं। इस काल में 15 बार एक के बाद एक मकानों के क्रम का पता चला है। इससे स्पष्ट है कि यह संस्कृति अल्पजीवी नहीं थी। मकानों की नींव रुखड़े पत्थरों की दी गई थी और उस पर मिट्टी की दीवारें खड़ी की गई थीं। कच्ची ईंटों की दीवारों भी कई कमरों में पाई गई हैं। मकान कई कमरों के होते थे। छत बांस या लकड़ी के बनते थे। पायों का प्रायः अभाव है। बड़े बड़े चूल्हे मिले हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कई परिवारों का साथ में खाना पीना सामूहिक ढंग से होता था। बड़ी बड़ी भट्टियों में शायद तांबा गलाया जाता था। इस समय लोहे का ज्ञान नहीं था पर तांबा का व्यवहार होता था। लोग मांस और अन्न खाते थे। कई जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं पर इसके साथ चक्कियाँ कूटने और पीसने के उपकरण भी मिले हैं। अतः अनाज उपजाया जाता था जो भोजन का अंग था। अभाग्यवश किसी अन्न का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। मिट्टी के अनेक तकुआ चक्की मिले हैं जिससे स्पष्ट है कि लोग कपड़ा बुनना जानते थे और वस्त्र का व्यवहार करते थे। मिट्टी के मनकों के अलावे अकीक कार्नेलियन आज पत्थरों के भी मनके मिले हैं। मिट्टी के खिलौनों में एक भेड़ बड़ी सिंह वाला बैल उल्लेखनीय है। लोग आभूषणों का भी व्यवहार करते थे। तांबा की अंगूठी और कड़ा मिला है। मनकों को पिरोकर भी अनेक प्रकार के गहने बनाए जाते होंगे। यह उल्लेखनीय है कि पाषाण के औजार नहीं मिले हैं पर साधारणतया इस सभ्यता को ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता का ही रूप माना जाना चाहिए। उदयपुर से प्रायः 45 मील उत्तर दक्षिण वान नदी के तट से 1 मील दूर गिलुंड में आहार संस्कृति का विस्तार और विकास पाया गया है। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के काल की 4 प्रवस्थाएं यहाँ पाई गई हैं। इसका समय 1700 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना गया है। मकान में अधिकतर मिट्टी की दीवार बनाई जाती थी। मिट्टी सरकंडा और बांस की भट्टियों के ऊपर छाजन के लिए छप्पर भी बनाया जाता था। यह उल्लेखनीय है कि भट्ठे में पकाई गई ईंटों की एक दीवार भी मिली है जो पत्थरों की गिट्टी की नींव पर खड़ी है। दीवार पर मिट्टी चूना और बालू से प्लास्टर किया गया है। ईंटों का माप हड़प्पा संस्कृति की ईंटों के लगभग बराबर है। अब यह महत्वपूर्ण है, मकानों में मिट्टी के चूल्हे थे जिन पर चूने से पुताई की गई थी। मिट्टी के बर्तनों के कई प्रकार मिले हैं जैसे काला और लाल, लाल पर काला, दीप्त काला और उजला रंग से बहुरंजित चित्रित कटोरी और तस्तरियों पर उजला रंग से चित्रित रेखांकन मिला है। स्तंभ तस्तरी लंबी गर्दन वाले मर्तबान बर्तनों के प्रकारों में उल्लेखनीय है। सबसे महत्वपूर्ण है टोटीदार चित्रमय बड़ा बेसिन। पश्चिमी एशिया में ऐसे बर्तन अधिकतर मिले हैं। क्या गिलुंदवासी पश्चिमी एशिया से संपर्क रखते थे, इस पर कोई निर्णय लेना संभव नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के नावदा टोली की प्राचीन संस्कृति का आहार गिलुंद की काला और लाल संस्कृति से निकट संबंध रहा है। आरंभ में ये लोग वृत्ताकार, वर्गाकार या चतुर्भुजाकार मकानों में रहते थे जिनका ढांचा लकड़ी के 5 पॉट्स का बना था जिसे बाहर और भीतर मिट्टी के प्लस्तर कर दिया जाता था। फर्श भी मिट्टी और गोबर की बनी थी। दीवार और फर्श पर चूने की पुताई की गई थी। कमरे काफ़ी बड़े थे, 20 फीट × 40 फीट से लेकर 8 × 10 फीट तक। छोटे छोटे वृत्ताकार कमरे शायद अनाज के गोदाम के काम में लाए जाते तो होंगे। अगर लोग अधिकतर मिट्टी के बर्तन व्यवहार में लाते थे। बड़े संग्रह भांड लार्ज स्टोरेज जार्स काफ़ी मजबूत और पुष्ट होते थे और उनके गले उत्कीर्णम या चिपकवा अलंकृत हैं। यहाँ मृदभांड प्रकार का सबसे सामान्य प्रकार है। हल्का लाल लेप वाले बर्तन जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है, इस मृदभांड प्रकार को मालवा वेयर की संज्ञा दी गई है। नावदा टोली में पूरे ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति में यह मृदभांड प्रकार बहुतायत में मिला है पर इसके साथ साथ प्रथम काल में ही उजले रंग से चित्रित वाले काले और लाल मृदभांड भी मिले हैं। कदाचित ये आहार क्षेत्र से आयातित हैं। फिर पहले और दूसरे काल पीरियड 1 और 2 में उजले लेप वाले बर्तन भी मिले हैं। इनके बर्तनों में चौड़ी और चिपटी को वाली साधारण उल्टी तस्तरी की अपनी विशेषता है। उभरी हुई पेंदी वाला अवतल भित्ति का कटोरा भी उल्लेखनीय है। ऐसे बर्तन ईरान के सियानाक में पाए जाए हैं। इस उजले लेप वाले बर्तनों पर साधारणतया दौड़ते हुए हिरण और नृत्य करते हुए मनुष्यों की आकृतियाँ चित्रित हैं। इस समय लोग गेहूँ उपजाते थे। हल का चित्र नहीं मिला है। 2 प्रकार के गेहूँ का व्यवहार होता था। अनेक प्रकार के दाल, मसूर, मूंग, मटर के अवशेष मिले हैं। कुल्थी, सेम और तीसी का व्यवहार होता था। ये सब शायद पहले पश्चिम एशिया में पाए गए थे और वहीं से भारत पहुँचे। पर नर्मदा टोली के ताम्रपाषाण संस्कृति की भी द्वितीय प्रस्थाना में चावल के व्यवहार का प्रमाण मिला है। चावल शायद भारतीय उपज है। अनाज के पके पौधों को पत्थर के दांतों वाली हंसिया से काटा जाता था और अवितल चक्की में मूसल से कूटा जाता था। अनाज के साथ साथ लोग सुअर, भेड़, बकरी और हिरण का मांस भी खाते थे। कृषि के आवले अलावे अखेट भी एक व्यवसाय था। यह सभ्यता मूलतः कृषि सभ्यता थी। लोग तांबा का व्यवहार जानते थे, लोहा का ज्ञान नहीं था। इस समय पत्थरों के औजार भी व्यवहार में लाए जाते थे, विशेषकर अत्यंत लघु पाषाण माइक्रोलिथ उपकरण इस ताम्रपाषाण संस्कृति के सहचर हैं। नावदा टोली में इस संस्कृति का समय 1700 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना गया है, जबकि लोहा व्यवहार करने वाली जात ने इस सभ्यता का अंत किया था। मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा क्षेत्र में एरण में भी सबसे प्राचीनतम संस्कृति काला और लाल मृदभांड संस्कृति है। कुछ ऐसे बर्तनों के काले हिस्से पर उजले रंग में टेढ़ी मेढ़ी लकीरें चित्रित हैं, जैसे आहाड़ में। इसके साथ ही मालवा मृदभांड भी मिलते हैं। आहाड़ और नर्मदा टोली दोनों क्षेत्रों का स्पष्ट प्रभाव है। एरण में भी इस ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का समय 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना गया है, जबकि लोहा के व्यवहार करने वाली जाति ने इस संस्कृति का अंत किया। बिहार में सोनपुर, गया जिला और चिरांत छपरा जिला में ताम्रपाषाण युगीन काला और लाल मृदभांड संस्कृति के चिन्ह मानव बसाओ के सबसे पहले स्तर पर मिले हैं। इस सांस्कृतिक काल के प्रथम प्रस्थाना या चरण में रुच्छ काला और लाल मृदभांड के साथ कुछ काला या काला और लाल मृदभांड पर उजले रंग से टेढ़ी मेढ़ी लकीरें चित्रित की गई हैं, जैसे आहाड़ में मिले थे। बर्तनों के रूप में स्तंभ तस्तरी नर्मदा टोली में पाए गए ईरानी प्रकार का लोटा और अनेक प्रकार के कटोरे उल्लेखनीय हैं। तांबे की चीजें भी मिली हैं, पर लोहा का अभाव है। लघु पाषाण उपकरण भी इस स्तर में पाए गए हैं। इस काल के द्वितीय चरण में सुगठित पतली दीवारों वाले मृदभांड मिलते हैं। इस स्तर पर चिरांद में लोहा का भी चिन्ह मिला है। बंगाल के राजरद्वीप स्थान में प्राचीनतम संस्कृति काला और लाल मृदभांड संस्कृति है। कुछ उजले चित्रित मृदभांडों के उदाहरण भी मिले हैं। इसी स्तर पर लोहा का भी पाया जाना बताया गया है, पर यह संदिग्ध है। चावल के व्यवहार की संभावना भी बताई गई है। चिरांत सोनपुर की प्राचीनतम संस्कृति का समय निश्चय ही 1000 ईसा पूर्व से पहले का है। यदि हम आहाड़, एरण और नर्मदा टोली के इस काल की संस्कृति के समय को ध्यान में रखें, उत्तर प्रदेश में राजघाट की खुदाई से भी यही पता चला है कि काला और लाल मृदभांड संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित अतरंजी खेड़ा की खुदाई से भी काला और लाल मृदभांड संस्कृति की प्राचीनता स्पष्ट है, यद्यपि इनके बर्तनों के रूप, चित्रकारी और रंग में कुछ भिन्नता है। अतः यह स्पष्ट है कि काला और लाल मृदभांड संस्कृति का विस्तार और आयु काफ़ी लंबी चौड़ी है। सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और राजस्थान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका समय 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। खुदाई से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में इसका विकास बहुत अधिक और लंबे समय तक हुआ। अभी यह कहना मुश्किल है कि संस्कृति के जनक कौन थे। क्या यह आर्यों की एक शाखा थी जो भारत में पहले सिंध में आई और वहां से राजस्थान, मालवा और मध्य गंगा घाटी में पहुंची। नावडा टोली में प्राप्त मालवा मृदभांड संस्कृति को ईरानी मृदभांडों को समानता के आधार पर यह मत व्यक्त किया गया है कि इस संस्कृति के जन्मदाता आर्य हो सकते हैं जो ईरान से भारत आए। पर यह भी संभव है कि यह संस्कृति देशज हो जिसे आर्यों ने विजित की। इस प्रश्न पर अभी कोई पक्की राय नहीं दी जा सकती। इस प्रसंग में अब हम गंगा यमुना घाटी के गेरू रंग से घुले मृदभांड संस्कृति आर्चर वास्ट कल्चर वेयर OCW पर विचार करेंगे। हस्तिनापुर में ऐसे घुले मृदभांड संस्कृति ही हैं। इस सिलसिले में उल्लेखनीय है कि ऊपरेली गंगा घाटी से लेकर उड़ीसा तक 30 से अधिक स्थानों पर गेरू घुले मृदभांड और तांबा संचय कॉपर हॉर्स दोनों मिले हैं। कई विद्वानों का विचार है कि इन उपकरणों और गेरू घुले मृदभांड का व्यवहार करने वाले एक ही जात के लोग थे। कुछ लोग इन्हें आर्यों की एक शाखा मानते हैं, पर यह उल्लेखनीय है कि अभी तक कहीं भी खुदाई से एक ही स्तर पर तांबा संचय और गेरू घुले मृदभांड नहीं मिले हैं। ऐसे मृदभांडों के टुकड़े ही मिले हैं जिनसे बर्तनों के आकार व रूप का ठीक पता नहीं चला है। हम यह कह सकते हैं कि उपरेली गंगा यमुना घाटी में गेरू मृदभांड संस्कृति ही सबसे प्राचीन थी। इसके व्यवहार करने वालों के विषय में अभी कुछ कहना कल्पना से अधिक नहीं है। हाल में मध्य प्रदेश स्थित नावदा टोली, चांदोली और खुर्दी से भी तांबा संचय मिले हैं। कुछ विद्वान इस संस्कृति को आदियों के पूर्व की निषाद संस्कृति मानते हैं। अतरंजी खेड़ा में गेरू मृदभांड के स्तर के ऊपर काला और लाल मृदभांड मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि उपरेली गंगा यमुना घाटी में काला और लाल मृदभांड संस्कृति गेरू मृदभांड संस्कृति के बाद की है, पर मध्य गंगा यमुना घाटी में इसके बाद की मृदभांड संस्कृति चित्त दूसर भांड संस्कृति PGW है। उपरली गंगा घाटी स्थित हस्तिनापुर की खुदाई से यह पता चला है कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति गेरू भांड संस्कृति के तुरंत बाद आई। धूसर भांड के बर्तनों के रूप गुण और आकार प्रकार अत्यंत विकसित हैं। इन पर काले रंगों में चित्र बने हैं, कभी कभी ये चित्र चॉकलेटी रंग के भी हैं। चित्रित अभिकल्पों डिजाइन में सीधी लकीरों का समूह, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों का समूह, बिंदु और रेखिकाओं का कतार, अर्धवृत्त स्वास्तिक कुटुंबकृत डिजाइनों की कतारें जो उदय होते सूर्य के चित्र सी लगती हैं, ये चित्र दृश्य उल्लेखनीय हैं। पंजाब स्थित रूपड़ और बाड़ा में पतनोन्मुख हड़प्पा संस्कृति के नष्ट होने के काफ़ी समय बाद चित्रित धूसर भांड मिलते हैं। मेरठ जिला के आलमगीरपुर में भी यह पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के अंत के कुछ समय बाद चित्रित धूसर भांड PGW संस्कृति का आगमन हुआ। इस क्षेत्र हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा के अलावे चित्रित धूसर भांड दिल्ली मथुरा श्रावस्ती कौशाम्बी वैशाली और दक्षिण में उज्जैन में पाए गए हैं। इन बर्तनों में सीधी उत्तल नवतल गांव दुगमाकार कटवावदार नालीदार या लहरिया दीवार वाले कटोरी और तस्तरियाँ मिली हैं। बर्तन चाक पर गढ़े गए हैं। बर्तन पूरी तरह पके और कड़े हैं। पकाने के पहले पूरी तरह सुखा कर कड़ा होने के बाद इस पर चित्र रंगे जाते थे। इस समय लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे, अनाज उपजाते थे। इन्हें चावल का ज्ञान था, ये मांसाहारी थे एवं घोड़ों का व्यवहार करते थे। तांबा धातु का प्रयोग भी साधारणतया होता था। हस्तिनापुर में इस संस्कृति के ऊपरले स्तर पर लोहे का पेंड मिला है। इस संस्कृति का समय 1100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। अधिकतर विद्वान इस संस्कृति के कर्ता आर्यों को बताते हैं, विशेषकर महाभारतकालीन आर्य। इसके बाद उत्तर काला चमकीला मृदभांड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, जिसका आरंभ ऐतिहासिक युगदास 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत और मध्य भारत में हड़प्पा संस्कृति और इसके बाद की संस्कृतियों का क्रम कुछ इस प्रकार रहा है। उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा, चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा, गेरू मृदभांड परंपरा, काला और लाल मृदभांड परंपरा, द्युतिमान लाल मृदभांड परंपरा, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, हड़प्पा मृदभांड। एक बार फिर से NBPW वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, ऑर्चर वास्ट वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, लस्टरस रेड वेयर, लेट हड़प्पन वेयर, हड़प्पन वेयर। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति का अंत और ऐतिहासिक युग के आरंभ के मध्य के सांस्कृतिक विकास इतिहास की कड़ियों को जोड़ने की कोशिशें की गई हैं। इस अवधि में हमें वैदिक कार्यों का इतिहास भी रखना है। अभी तक आर्यों का परिचय हमें सिर्फ साहित्य वेद महाकाव्य पुराण से ही मिलता है। हम ऊपर देख चुके हैं कि पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न मृदभांड संस्कृतियों का आर्य सभ्यता से संबंध जोड़ने की चेष्टा की है, पर अभी कुछ स्थिर नहीं हो पाया है। अतः हम वैदिक आर्यों का इतिहास और सभ्यता लगभग पूर्णतया साहित्य के आधार पर ही पढ़ते हैं। प्रमुख केंद्र ताम्रपाषाणिक संस्कृति के विस्तार का निम्न क्षेत्रों में प्रमुख केंद्र है। क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। आहाड़ कायथा मालवा जुर्वे कुलडीहवा। पश्चिमी क्षेत्र में आहाड़ है, मध्य क्षेत्र में कायथा और मालवा है, दक्षिणी क्षेत्र में जुर्वे है, उत्तरी क्षेत्र में कुलडीहवा है। पश्चिमी क्षेत्र आहाड़। यह पूरा स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बनास घाटी में है, जिसका उत्खनन RC अग्रवाल ने शुरू करवाया था। संकलिया ने विस्तृत उत्खनन किया, इसके कई स्तर मिले हैं। बनास घाटी में होने से इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ के मकान पत्थर की चहारदीवारी से घिरे मिले हैं। इनका फर्श बालू और सिल्ट का बना है। यहाँ स्तंभ गर्त नहीं मिले हैं, अतः खंभे नहीं गाड़ते होंगे। छत चपटा होता था। भीतर फर्श पर चूल्हे उठे हुए मिले हैं। कुछ बड़े मुंह के हैं जो तांबा पिघलने की भट्टी रहे होंगे। लघुवास्म उपकरण का अभाव था। इसी के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, पर कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। यहाँ मिट्टी के उठे किनारे वाली नाली से जुड़ा गर्त है, जो संभवतः खनती के लिए भूमि में बने होंगे। तीसरे स्तर में इन्हें अवनित नहीं दिखती है। ये पत्थर के टुकड़ों, मिट्टी तथा मिट्टी की ईंटों के बने हैं और उन पर फूस से छाजन किया जाता है। यहाँ एक बड़ा भूमि गर्त मिला है, जिस पर बालू इसमें से मिट्टी से लेप किया गया है। इसके आकार प्रकार से यह निवास गर्त लगता है। संभवतः यह उनके आर्थिक तिरोहण का बोधक है। इसकी विशिष्टता मृदभांडों की है, जिसमें प्रमुख हैं छोटे और मध्यम आकार के कटोरी और झंझर। यद्यपि मिट्टी मुलायम नहीं है, पर सतह जले हैं। इन पर चित्रण बाहरी ओर से किया गया है, पर छिछली तस्तरियों के अंदर भी चित्रकारी हुई है, जिनमें मुख्य हैं रेखा बिंदु पड़ी रेखा जालीदार हीरक आदि। काले एवं लाल बर्तन अधिक उपलब्ध हुए हैं। आहार से आहार से जो प्राप्त हुए हैं बर्तन, इनके अंदर का भाग काला होने का कारण है इनको आवा में उल्टे मुंह पकाया जाना। लूकस के अनुसार अंदर भूसी आदि के कारण ये काले हो गए हैं, और जीजी मजूमदार ने इसको 2 बार पकाए जाने के कारण इनका रंग ऐसा होना बताया है। यहाँ जो बर्तन मिले हैं आहार में, बर्तन चाक के अतिरिक्त सांचे में भी पकाए जाते थे, जिन्हें और पकाने जाने के पहले रंगा जाता होगा। इस प्रकार के रंग के बर्तन मिस्र की ममियों में बहुत मिले हैं, अतः अनुमान है कि वहाँ के संपर्क द्वारा भी यह प्रयोग किया गया हो। लाल रंग के बर्तन 8 विभिन्न प्रकारों में हल्के से गाढ़े रंग के कारण विभक्त किए गए हैं। आहार की तस्तरियाँ साधारण हैं और झंझरे भी आधार युक्त हैं। ऊपरी भाग कमल की तरह खिला सुंदर लगता है। संकलिया ने इन पर ईरानी प्रभाव माना है। इन पर मोटा लेप किया गया है। धूसर रंग के भी मेदवार मिले हैं। ये 3 प्रकार के हैं। इनमें सर्वप्रमुख है तावा, जिसके बीच का भाग कुछ गड्ढे की तरह है। इसके अतिरिक्त हाथ के बने छोर भी हैं, जो मिट्टी की बत्तियों को जोड़कर बनाए गए हैं। कुछ गेरू रंग के बर्तन भी मिले हैं, पर इनकी संख्या नगण्य है। ये मिट्टी तथा अर्धबेशकीमती पत्थर के बनते हैं। यहाँ के पांच कांच के मनके मिले हैं। इससे कांच का प्रयोग कई हजार वर्ष पुराना ज्ञात होता है। मिट्टी के मनके अधिकतर उथले हैं। इन पर कई प्रकार के रेखांकित डिजाइनें बनी हैं। मिट्टी का लेप भी हुआ है। आहार प्रमुख रूप से ताम्र सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है। तांबा यहाँ राजस्थान के खेतड़ी तथा अन्य स्थानों से प्राप्त होता था। इस समय वहाँ ताम्र नदियों का भरपूर उपयोग किया गया है। यहाँ ज्वार के पैदावार की संभावना अति प्रबल है। यहाँ के लोग वृषभ और शिव के उपासक थे, क्योंकि यहाँ वृषभों की अनेक प्रकार की आकृतियाँ और शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। कुछ लिंग ऐसे भी मिले हैं जिनके सिर पर छेद है। इससे लगता है कि बाद के लिंगायत संप्रदाय के लोगों की तरह ये इसमें डोरी लगाकर गले में पहनते होंगे। इसी से कायथा, मालवा आदि केंद्रों के आहार स्थल से भी ये मूर्तियाँ मिली हैं। आहार संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों पर लाल पर काले लेप के भांड बने हैं, वहाँ इस पर लिस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। ऐसी कला मिस्र में होने से लगता है कि इस संस्कृति का संबंध मिस्र से भी रहा। यह संस्कृति लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक रही। इसके बाद बिना किसी पदचिह्न छोड़े गायब हो गई। यहाँ के लोग इस स्थान को छोड़कर आगे बढ़े और कायथा में 1900 ईसा पूर्व में पहुँचे थे। आहार की बस्ती फिर ऐतिहासिक काल में बनी। कुछ लोगों का अनुमान है कि कम वर्षा के कारण इस संस्कृति का अंत हुआ। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत मध्य क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र में कायथा है। कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बहने वाली छोटी काली सिंधु के तट पर कायथा नामक पुरास्थल प्राप्त हुआ। आज भी यहाँ इस नाम का एक गांव है। इसके मुख्य गढ़ पर कायथा संस्कृति थी, जबकि दूसरे सटे टीलों पर आहाड़ या बनास संस्कृति दिखती है। पहले यह स्थल कपित्थक नाम से विख्यात था, जो प्रकांड ज्योतिषी वाराहमिहिर की जन्मभूमि थी। इस संस्कृति का काल लगभग 2450 से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। कायथा कपित्थक के नाम से विख्यात था, जो प्रकांड ज्योतिषी वाराहमिहिर की जन्मभूमि थी, और इस संस्कृति का काल लगभग 2450 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऐसा अनुमानित है कि कायथा संस्कृति के निर्माता इस स्थान के मूल वासी थे। ऐसा अनुमानित है कि कायथा संस्कृति के लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। यहाँ के लोगों की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जो कृषि, पशुपालन, शिकार तथा मत्स्य उद्योग पर आधारित थी। ये लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे। यहाँ वर्षा पर्याप्त तो होती थी। पालतू पशुओं में गाय, बैल, बकरी, भेड़ प्रमुख थे। इनको खाने के लिए पालन किया जाता था। कायथा से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, जो एक प्रमुख विचित्रता है। मिट्टी की एक घोड़े की आकृति भी मिली। इसके आधार पर भारत में आर्यों के विस्तार के पूर्व घोड़े की प्राप्ति का ज्ञान मिलता है। यहाँ के मृदभांडों का रंग चॉकलेटी होने से चॉकलेटी मृदभांड कहलाते हैं। प्रारंभिक स्तर से 1/3 बर्तन इसी रंग के मिलते हैं, पर ऊपरी स्तर पर इसमें कमी आती है। अच्छी मिट्टी के बने होने से इनका रंग अत्यंत उभरा है। ये बर्तन तेज आँच पर एक तरह से पकाए गए हैं। ये चाक के बने हैं, जिनसे सूत से काट कर अधिक मिट्टी निकाल कर इन्हें सुंदर बनाया गया है। इन बर्तनों का पेड़ा बड़ा चिकना और समतल है। ये बर्तन टुकड़ों में तैयार कर एक में जोड़े गए हैं। प्रायः स्कंद या बीच में देखने से ऐसे जोड़ मिलते हैं। इनके आधार पर छल्ले या तस्तरी नुमा आकृतियाँ बनी हैं। कुछ में पेंदी छल्ले के बाहर निकली हुई है। आग में इन्हें हल्के लाल रंग पर पकाया जाता था, जिस पर चॉकलेटी रंग चढ़ाते थे। इसके रंगों में हल्का से क्रमशः गाढ़ा होने का अंतर ज्ञात होता है। कभी कभी यह रंग इतना पतला है कि लगता है जैसे यह रंग बनाकर उसमें बर्तन डुबाया गया हो, पर प्रायः गाढ़ा होने से अलग अलग खंडों में बांट कर लगाया गया दिखता है। केवल रंग पर बैंगनी रंग से चित्रण किया गया है। प्रायः रेखाएं उत्खनित हैं। ये बर्तन दो वर्गों में रखे जा सकते हैं, पतले और मोटे। पतले बर्तन अधिक हैं, जिसमें लोटा प्रमुख है, जो गोल आकार, घटते गर्तन और चौड़ी मुका बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त कटोरे और जार भी मिले हैं, पर ये दोनों प्रकारों के मिले हैं। इसमें कुछ हड़प्पा केंद्रों के भांडों के अनुरूप भी हैं। दूसरी पात्र परंपरा में पांडु रंग के बर्तन आते हैं, जिन पर लाल रंग चढ़ा है। इनके किनारे पतले और बनावट सुंदर हैं। पांडु रंग के लेप में रंगों का अंतर पीले से हल्का गुलाबी तक मिलता है। इस पर गाढ़े रंग का चित्रण किया गया है, जो रेखीय, ज्यामितीय और जालीदार हैं। इनको चाक पर बनाकर गीले कपड़े से रगड़ कर चमकाया गया है। इनके गर्दन सिकुड़े हैं और आकार फैला है। यहाँ लोटा प्रकार के पात्रों में बहुमूल्य गहने रखे जाते थे। तीसरी पात्र परंपरा है कंघीदार आरेखन वाला। इन बर्तनों के अंदर तथा आधार पर गाढ़े लाल रंग का लेप किया जाता था। कंघादार आरेखन इन पर सजावट के लिए किया गया है। अधिकांश बर्तनों पर यह अंकन क्षैतिज रूप में कंघेदार उपकरण पर बने हैं, जो चार या पांच वर्गों में बटे हैं। ये प्रायः गर्दन के नीचे बने हैं, कभी कभी पात्रों के भीतर भी टेढ़ी रेखाएं हैं। चौथी पात्र परंपरा में भत्ते हाथ से बने लाल धूसर भांड बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें हाड़ी, तस्त और संग्रह करने के मटके हैं। इन पर बांस की धारी बनी है। इस प्रकार चार प्रकार के मृदभांड कायथा में मिलते हैं। पहला चाकलेती मृदभांड, दूसरा पांडु रंग के बर्तन पांडु रंग मृदभांड परंपरा, और तीसरा कंघीधार आरेखन वाला मृदभांड परंपरा, और चौथा पात्र परंपरा भद्दे हाथ के बने लाल धूसर भांड, जो कि बड़ी संख्या में मिले हैं। ये है उपकरणों के आधार पर कायथा को ताम्रपाषाणिक संस्कृति का माना गया है। इसमें ताम्र उपकरणों की अधिकता है। इसके गहने भी थे, जिसमें गोल कड़े विशिष्ट हैं। इनको हथौड़े से पीटकर बनाया गया है। ये उस समय की आर्थिक अवस्था के परिचायक हैं। ऐसा लगता है कि कड़े पहनने के लिए नहीं, बल्कि संपत्ति के रूप में संग्रह के लिए बनाए जाते थे। तांबे की कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। इनको सांचे में ढालकर बनाया गया है, न कि अन्य केंद्रों की तरह धातु को हथौड़े से पीटकर। यहाँ फल उद्योग भी विकसित तथा इसमें विकसित है। समांतर किनारे वाले फाल, चाकू के फाल आदि, इसके लिए चैल्सीडोनी और कम मात्रा में अगेट का प्रयोग किया गया है। चैल्सीडोनी के छोटे दाने भी प्राप्त हुए हैं। गहनों में यहाँ के दो प्रकार के हार विशेष उल्लेखनीय, जो अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके से बने हैं, स्टीयराइट के मनके भी प्राप्त हुए हैं। इसके निर्माता कायथा मूल के लोग नहीं थे, वरन दूसरी संस्कृति के थे, जो वहाँ से आकर कायथा में बसे थे। इनके बर्तनों का संबंध कलात्मक दृष्टि से पूर्व हड़प्पा संस्कृति से लगता है, पर ज्ञात नहीं होता कि हड़प्पा संस्कृति से इनका संबंध था। जब हड़प्पाई नगर विकसित हुए, तो वहाँ के पहले बसने वालों को इन्होंने भगाया होगा, जिन्होंने दूसरे क्षेत्रों में पहुंचकर प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति पर आधारित अपनी संस्कृति को विकसित किया। इसका अंत प्रकृति में महान परिवर्तन के कारण ही संभव हुआ होगा। यह भी संभावना है कि पश्चिमी भारत में भीषण भूचाल आया हो, जिससे कच्छ और सौराष्ट्र की सिंधु सभ्यता विनष्ट हुई। तब से यह पूरा स्थल कुछ काल तक उजड़ गया। इसी से कायथा और आहार संस्कृति के स्तरों में एक व्यतिक्रम दिखता।